हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 375। इतना बोलते हुए नैना ने ही ट्रे में से पहला कप उठाने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही आदित्य ने सबसे पहले ट्रे में से कॉफी का कप उठा लिया और बोला, हाँ सही कहा नैना, दिन तो मेरा भी बन जाएगा आज, इतने दिनों के बाद अपनी सोना के हाथ की कॉफी पीकर। और ये तो सबसे अमेजिंग होती है, पता नहीं कॉफी और दूध के साथ क्या जादू डालती हो तुम इसमें। आदित्य ने पहली ही सिप लेकर इतनी ज्यादा तारीफ करते हुए कहा तो सुनैना ने उसकी तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया, क्योंकि जो कुछ भी आदित्य बोल रहा है वो सब कुछ उसके सिर के ऊपर से जा रहा है, और उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं कि कभी भी उसने आदित्य को अपने हाथ से कॉफी बनाकर पिलाई हो। लेकिन वो जो कुछ भी बोल रहा है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ना जाने कितनी बार उसके हाथ की कॉफी पीकर ऐसे ही तारीफ कर चुका है। सुनैना ने उस वक्त सबके सामने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो सबसे थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें कर रही है। और फिर अरुण से उसने उसकी पढ़ाई और कॉलेज के बारे में पूछा। वो स्वीटी से इतना ज्यादा बातचीत नहीं कर रही है क्योंकि उसके हिसाब से स्वीटी अभी कुछ दिनों पहले ही वहां पर रहने के लिए आई है और सुनैना स्वीटी के साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन स्वीटी की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए वो एकदम फ्री होकर उससे बात कर रही है और सुनैना बस हर बात का मुस्कुराते हुए या नहीं में जवाब दे रही है। नैना ने सुनैना की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो सुनैना बताओ, तुम्हारी शादी को तो एक साल होने वाले है ना, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है या नहीं तुम दोनों ने? देखो मैं और अक्षत, स्वीटी, अरुण, हम सब तो एक बहुत ही बड़ी शानदार पार्टी चाहते हैं जिसमें सारे लोगों को बुलाओ, कम से कम वो सारे जो तुम्हारी शादी में थे और नहीं थे, मतलब मैं तो नहीं थी ना शादी में, तो बस समझ लो शादी से भी ज्यादा शानदार पार्टी देखना चाहती हूँ मैं। नैना ने बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड होते हुए कहा तो सुनैना उसकी बात सुनकर बहुत ही कन्फ्यूजन से बोली, क्या एक साल मैरिज एनिवर्सरी, ये आप ये सब क्या बोल रहे हो दी, मेरी शादी को तो अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं। सुनैना ने एकदम से ये बोला तो उसकी बात सुनकर नैना एकदम चुप हो गई और आदित्य की तरफ ही देखने लगी। तो फिर आदित्य ने उसे आगे बोलने का इशारा किया, जबकि सुनैना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसे जितना कुछ भी याद है उस हिसाब से अभी उसकी शादी को 2 महीने और कुछ दिन ही हुए हैं, पर उसकी बहन ऐसे उसकी 1 साल एनिवर्सरी की बात कर रही है, लेकिन क्यों, ये सब उसे समझ नहीं आ रहा। और वो इतनी खुश क्यों है उसकी शादी को लेकर, जबकि सुनैना तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, और जहां तक उसे याद है उसने नैना को भी इस बारे में ऐसा ही कुछ बताया था। लेकिन आदित्य का इशारा पाकर नैना, स्वीटी और अरुण के साथ आदित्य भी जोर जोर से हंसने लगा। और फिर सुनैना की तरफ देखते हुए आदित्य ने कहा, सोना अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, लेकिन अभी ये मजाक करने का वक्त नहीं है, आखिर तुम्हारी बहन कुछ पूछ रही है, वैसे हमने अब तक इस बारे में बात नहीं की, तो तुम उन्हें सच भी बता सकती हो, वो बुरा नहीं मानेंगी, है ना नैना? आदित्य ने एकदम फॉर्मल होते हुए जवाब दिया। तो सुनैना ने कहा, मैं भला क्यों कोई भी मजाक करूंगी, और तुम लोग ये सब क्या बोल रहे हो, 1 साल भला कब हो गया, मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आप भूल रही है कुछ डेट। और इतना कहते हुए सुनैना आगे बोल पाती उससे पहले ही अरुण ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें डेट का कैलेंडर खोलकर सुनैना के सामने करते हुए कहा, क्या कोई डेट, किसी को कुछ गलतफहमी नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं भूल रहा, देखो आप ये डेट, पिछले साल अगस्त में आपकी शादी हुई थी ना, और अभी जुलाई शुरू हुआ है, इसका मतलब अगले महीने अगस्त में आपकी एनिवर्सरी है, और अभी कुछ 1 महीना या उससे भी ज्यादा 40 दिन का वक्त है, मतलब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन दी आप ये तो मत बोलो कि अभी 3 महीने हुए हैं। अरुण ने हंसते हुए ये बात इस तरह से कही जैसे कि सुनैना की बात को वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा, लेकिन उसके मोबाइल फोन पर तारीख देखते हुए सुनैना की आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो गईं और उसने अरुण के हाथ से मोबाइल फोन लेते हुए कहा, क्या जुलाई 2023 चल रहा है, मुझे तो लगा था 2022 ही है अभी, मैंने कब से डेट पर ध्यान नहीं दिया अपने मोबाइल की भी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी 2022 का नवंबर चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ सच में, और ये सब झूठ तो नहीं है ना? इतना बोलते हुए उसने मोबाइल फोन में इधर उधर स्क्रीन पर टच किया ये देखने के लिए कि कहीं अरुण उसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा। उसे ऐसे हाइपर होते देख आदित्य ने आगे आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ से मोबाइल फोन लेकर अरुण को वापस करते हुए कहा, रिलैक्स होना, तुम इतना क्यों सोच रही हो, और हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, उसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, और नैना, मुझे लगता है सोना शायद पार्टी देने के मूड में नहीं है, इसीलिए ही ये सब कर रही है। ये बात आदित्य ने बहुत ही नॉर्मल अंदाज में बोली, जबकि सुनैना अभी तक उसका मुंह देख रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है और अब फिर क्या करना चाहता है। लेकिन आदित्य की ये बात सुनकर नैना हल्का सा मुस्कुराई और सुनैना कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही स्वीटी ने बीच में बोलते हुए कहा, क्या भाभी, मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी आपसे। आखिर अब आप कंपनी की मालकिन भी बन गई हो तो क्या इस तरह से सारे पैसे बचाओगी? वैसे भी ये एनिवर्सरी तो साल में एक बार ही आती है और आपने तो अपनी बर्थडे पार्टी भी नहीं दी आज तक किसी को। स्वीटी ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने का नाटक करते हुए कहा तो सुनैना ने कहा, कौन सी बर्थडे पार्टी, कौन सी एनिवर्सरी, ये सब क्या बोल रहे हो आप लोग? हाँ, मेरे सर में दर्द होने लगा है इस बारे में सोचकर कि इतने दिन कैसे बीत सकते हैं, और अगर बीत भी गए तो फिर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं? कुछ किया है क्या तुमने मेरे साथ? बताओ मुझे, क्या हुआ है, क्या हुआ था मेरे साथ? इतना बोलते हुए उसने आदित्य की तरफ देखा और फिर उसके हाथों से अपना हाथ वापस ले लिया। वो थोड़ी सी घबराई हुई लग रही है और सब कुछ बोलते हुए भी जब उसे कुछ याद नहीं आ रहा तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं और वो अपनी जगह से उठकर खड़ी होती हुई पीछे की तरफ चलने लगी। आदित्य भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और अपना हाथ आगे करके उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, सोना, बात सुनो मेरी, तुम इस तरह से मत घबराओ। देखो, तुम्हें चोट लगी है सिर पर और उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है, लेकिन तुम अगर ठंडे दिमाग से सब कुछ याद करने की कोशिश करोगी तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, ये पूरा बीता हुआ साल, हम दोनों, हमारे बीच का रिश्ता और सब कुछ। इतना बोलते हुए आदित्य ने उसके गाल पर हाथ रखा तो सुनैना को उसके टच करते ही जैसे बहुत कुछ अपने सामने नजर आया और उसका ये टच उसे काफी जाना पहचाना लगा। वो चाहकर भी आदित्य का हाथ इस बार दूर नहीं कर पाई और अपनी आंख उसने कसकर बंद कर ली और उसने बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर डालते हुए इस बारे में याद करने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका सिर फट जाएगा और उसे इतना तेज दर्द हुआ जैसे कि पीछे से किसी ने उसके सिर पर जोर से वार किया हो और फिर उसे हर तरफ खून नजर आया। ये सब देखते ही वो बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं आदि, तुम ठीक तो हो ना? और इतना कहते हुए उसने दोबारा से अपनी आंखें खोली तो आदित्य उसके सामने ही खड़ा था और आदित्य ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे।
सुनैना बहुत ही अजीब तरह से पीछे चलते हुए बोली, नहीं नहीं, मैंने ये सब क्या देखा अभी, और मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है पूरी तरह से, और वो धुंधली सी यादें जो मेरी आंखों के सामने फ्लैश हुई, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये बोलते हुए सुनैना ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसे अपनी पलकें एकदम भारी होती महसूस हुई और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में भी बिल्कुल जान नहीं बची है। उसकी ऐसी हालत देखकर वहां पर बैठे सभी लोग एकदम परेशान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी नैना भी लगभग भागते हुए उसकी तरफ आई और उसे समझाने की कोशिश करती हुई बोली, सुनैना देखो, ये सब कुछ तुम्हारी यादें। इतना बोलते हुए उसने जैसे ही सुनैना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसका पूरा शरीर एकदम ढीला हो गया और उसकी आंखें झपकते हुए बंद होने लगी और वो अपनी जगह पर ही गिरने वाली थी कि आदित्य ने उसे अपनी बाहों भी थाम लिया और उसे संभाल लिया, लेकिन वो अब तक पूरी तरह से अपने होश खो चुकी है। उसके इस तरह बेहोश होने की वजह से सारे लोग बहुत ही बेबसी से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और तभी अरुण ने सुनैना के लिए परेशान होते हुए कहा, ये क्या किया हम लोगों ने, हमें ये नहीं करना चाहिए था। इतना बोलते हुए वो बहुत दुखी लग रहा है और गिल्ट में भी। तभी आदित्य ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है मेरी सोना को, और वो बस बेहोश हुई है, अभी ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर, डॉक्टर अब तक क्यों नहीं आए? स्वीटी फिर से कॉल करो डॉक्टर को। इतना बोलते हुए आदित्य ने अपना मोबाइल फोन निकालकर स्वीटी की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलने की आहट हुई और सभी की नज़रें उस तरफ ही चली गईं। दूसरी तरफ मनस्वी का होटल, आज वो वहाँ होटल अपने काम पर नहीं आई है। वो वैसे भी किसी एक होटल में रेगुलर नहीं आती है और जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर किसी से मीटिंग में, वो बस उस जगह पर ही जाती है। लेकिन आजकल वो अनय के साथ साथ उसके काम करने वाली जगह पर कोई ना कोई बहाना बनाकर जाने लगी थी। लेकिन आज सुबह अनय के साथ जो भी बातचीत या बहस हुई, उसके बाद मनस्वी का घर से निकलने का ही मन नहीं हुआ और वो कमरे में औंधे मुंह अपने बिस्तर पर ही बड़ी हुई है और लगातार रो रही है। उसने अपना मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है क्योंकि वो किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ ऑफिस में अनय को जब इस बारे में पता चला कि मनस्वी आज अभी तक ऑफिस नहीं आई है और अब तक तो लंच टाइम हो गया था, तो उसने मनस्वी का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो उसने अपने हाथ में फ़ोन कसकर पकड़ते हुए गुस्से में कहा, फ़ोन क्यों स्विच ऑफ कर लिया है इसने, पता नहीं कहाँ होगी, गुस्से में कहीं इधर उधर ना चली जाए या फिर कुछ।
इतना बोलते हुए अनय ने अपने आप को थोड़ा शांत किया और खुद को समझाते हुए बोला, नहीं नहीं, वो बहुत ही समझदार है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और वैसे भी मैंने ऐसा तो कुछ गलत नहीं कहा जिसकी वजह से उसे तकलीफ हुई हो। क्रमशः